सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं साहुवच्छायिरिये अरहन्ते वन्दिऊणसिद्धेवी जे पञ्चलोगवाले वोच्छं बन्धस्य सामित्तम। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। आठवीं पुस्तक है, जो तृतीय खंड यहाँ शुरू होता है, बंध स्वामित्व विचय। बंध के बारे में ये बात चल रही है तो उसमें हम 48 पृष्ठ पर आए, 48। कल हमने देखा था कि अप्रत्याख्यानावरण की बात चल रही थी। चौथे गुणस्थान में जिन प्रकृतियों का बंध विच्छेद होता है, ऐसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, ये 17 नंबर के सूत्र में 40 पृष्ठ पर। किन प्रकृतियों की चर्चा अभी चल रही है उसकी थोड़ा लेगी ना, कंटिन्यूटी चाहिए हमें। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, मनुष्य गति, औदारिक शरीर, औदारिक शरीर अंगोपांग, वज्र ऋषभ वज्र नारा सहनन और मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी नाम कर्म का कौन बंधक कौन अबंधक है, ऐसी हमने देखी थी। तो ये चौथे गुणस्थान तक इसका बंध है, आगे इनका बंध नहीं होता, ये बात उन्होंने बताया। इन्हें बंध की विच्छित्ति वहाँ होती है। उसमें फिर हम अलग अलग प्रकृतियों की बात कर रहे थे, तो अप्रत्याख्यानावरण की बात पहले चली, तो वो तो हमने देखा था ध्रुवबंधी है, मिथ्यात्व और 16 कषाय ध्रुवबंधी होती, अनादि से बनते चले जाते हैं जब तक उसकी विच्छित्ति नहीं होती। और उसमें क्रोध का उदय हो, मान माया लोभ क्रोध सभी बंधेंगे, यानी क्रोध के उदय में क्रोध भी बंधेगा और मान माया, तो स्वोदय भी और परोदय भी है, ध्रुव होने से वो निरंतर बंधी है। ऐसी अलग अलग बातें हमने कल बहुत सारी देखी थी। फिर भी किसी कहीं कहीं वो निरंतर बंधी क्यों कही जाती है, ये अन्य बात, अन्य कर्मों की बात है। देखो औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग आदि के संबंध में बताया था, ये 47 पृष्ठ पर। मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी पांचवी लाइन में, और प्रत्याख्यानावरण तो चारों गति के जीव बांधते हैं, बराबर। अब यहां कह रहे मनुष्य गति और मनुष्य प्रायोगन पूर्वी, पहले गुणस्थान वाले बांधेंगे, दूसरे गुणस्थान वाले बांधेंगे, परंतु तीसरे और चौथे गुणस्थान में देव और नारकी हुई इसको बांधेंगे। मनुष्यों को तीसरे चौथे गुणस्थान वालों को मनुष्य गति का बंध नहीं होता, देव गति का होता है। तिर्यंचों को भी तीसरे चौथे गुणस्थान वालों को मनुष्य गति का बंध नहीं होता, देव गति का होता है, इसलिए उन्हें ये नहीं बांधेगी। ये बात हमने वहां देखे थे। और देवों के बारे में अगर बात करनी है तो हमने देखा था देव तो या तो तिर्यंच गति को बांधते हैं, मिथ्या दृष्टि और साधन समय दृष्टि जो है तिर्यंच गति को बांधेंगे या मनुष्य गति को बांधेंगे। ये कहां की बात है, ऑप्शन वाली, भवनत्रिक से लेकर सहस्रार तक, 12वें स्वर्ग तक मिथ्या दृष्टि देव है या सासाधन है, तिर्यंच गति या मनुष्य गति बांधेंगे। परंतु आनत प्राण तारण अच्युत ग्रैवेक और अनुदिश और अनुत्तर ये सारे ही निरंतर मनुष्य गति को ही बांधते हैं। ग्रेवेक में तो मिथ्या दृष्टि भी है ना, ऊपर तो सारे सम्यक दृष्टि है, वो तो मनुष्य गति बांधेगी ही बांधेगी, परंतु आरण ये आनंद प्राण तारण अच्युत और नव ग्रेवेक में तो मिथ्या दृष्टि भी हो गए, सासाधन भी हो गए, तो वो भी मनुष्य गति को ही बांधेंगे, उन्हें तिर्यंज गति का वहां बंध नहीं होगा, इसलिए उनकी अपेक्षा निरंतर बंध कहां। गति नाम कर्म निरंतर बनता है, परंतु मिथ्या दृष्टि कोई मनुष्य है तो चार गति में से एक गति बांधेगा, वो प्रतिपक्ष वाली थी इसलिए मनुष्यों में उसको सांतर कहेंगे, परंतु आरण अच्युत वगैरह ये जो ऊपर के आनत प्राणत वगैरह आनत आदि कहा, ये आनत तापी हुआ है वहां, आनत आदि करना उसको तीसरी लाइन में, आनत आदि देवों में इसलिए वहां निरंतर कहते, क्योंकि उसी एक गति का बंध होता है वहां पर, ये बात हमने कल देखी थी। अब हम आगे यहां आते हैं 48 पृष्ठ पर, तो कौन से प्रत्ययों से उनका बंध होता है, तो हमने देखा था ना ये अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क जो है कहां से कहां तक बनती है, पहले से चौथे तक बनती है, तो पहले गुणस्थान में कितने प्रत्ययों से बंध होता हमने देखा था 55, मूल प्रत्यय देखेंगे तो चारों मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, और उत्तर प्रत्यय देखेंगे तो 55 उत्तर प्रत्ययों की अपेक्षा, यानी नाना समयों में, और एक समय में देखेंगे तो कम से कम 10 और अधिक से अधिक 18, ये हमने पहले देखा था। देखो यहाँ क्या कहते हैं, हम यहां से पढ़ेंगे, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क को चार गुणस्थानों के जीव, चार ने पहले से चौथे तक के जीव ज्ञानावरण प्रत्ययों से ही बांधते हैं। ज्ञानावरण प्रत्यय का अर्थ होता है, पहले में पहले हमने ज्ञानावरण कौन से प्रत्ययों से बनता है उसकी बात देखी थी, पहले ही सूत्र में 16 प्रकृतियों की पहले बात की थी, वहां जिन प्रत्ययों की बात की उन्हीं प्रत्ययों से ये भी कर्म बनते हैं, इसलिए ज्ञानावरण प्रत्ययों से बनता है ऐसा कहा। ज्ञानावरण प्रत्यय का अर्थ है ज्ञानावरण के कोई अलग प्रत्यय हो गए और अप्रत्याख्यानावरण के कोई अलग है, ऐसी बात नहीं, पहले से चौथे गुणस्थानों में जितने प्रत्यय है उतने से उनमें बंध योग सभी प्रकृतियां बंधेगी। अभी हमने देखा ना ज्ञानावरण बनता है, तो मिथ्या तो गुणस्थान में प्रत्यय तो चारों मूल प्रत्यय थे, फिर ऊपर के गुणस्थानों में चले गए छठे में तो तीन ही मूल प्रत्यय रहे, इस तरह से प्रत्यय कम हो जाएंगे परंतु उस गुणस्थान में उतने प्रत्ययों से बंध होगा। इसी प्रकार मनुष्य गति और मनुष्य गति प्रायज्ञान पूर्वी के भी प्रत्ययों की चारों गुणस्थानों में प्ररूपणा करना चाहिए, और प्रत्याख्यानावरण भी उन्हीं प्रत्यय से बनते हैं और मनुष्य गति भी उन्हीं प्रत्ययों से बंधेगी, उसमें कुछ विशेष अंतर है वो अभी बताएंगे। विशेषता यह है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि के 42 प्रत्यय कहना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, अब ये कौन से प्रत्यय उसकी हमने पहले हम बात करेंगे, थोड़ा भूलते हैं ना, मिथ्यात्व के 5, अविरति के 12, कषाय है 25 और योग है 15, ये टोटल हमने गिना है। अब यहाँ क्या बात हो रही है, मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी बांधने वाले जीवों की बात है। अभी हमने देखा था पहले गुणस्थान में पांचों मिथ्यात्व है, 12 अविरति है, 25 कषाय है और योग 13 है, इसलिए इसकी संख्या 55 हुई थी। दूसरे गुणस्थानों में क्या पोजीशन है, मिथ्यात्व नहीं है, अविरति 12 है, कषाय यहां भी 25 है ना, यहां भी 25 कषाय यहां भी है और ये 13, यानी इसमें से 5 कम हुए तो 50 प्रत्यय थे। अब तीसरे गुणस्थान की बात हो रही, पहले में पहले हम तीसरे गुणस्थान में सामान्य से कितने प्रत्यय देखेंगे, फिर मनुष्य गति को बांधने में कौन से प्रत्यय कम करना उसको देखेंगे। तो तीसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं है, अविरति सब है, बारह के बारह है, यहाँ अनंतानुबंधी नहीं है, अनंतानुबंधी गए तो 21 ही हो गए, यानी 12, 21 और इसमें 13 लेने के नहीं लेने योग में, वो मिश्र और कारमाण उसको नहीं लेना। हाँ उसकी बाद में करने, अभी हम सामान्य से बात करें। हाँ सामान्य से अगर योग कौन से है तो मिश्र योग इसमें नहीं ले, पहले ही हमने आहारक आहारक को निकाल दिया था, आहारक मिश्र को, अब इसमें से औदारिक मिश्र भी निकालेंगे, वैक्रिक मिश्र भी निकालेंगे, कारमाण भी निकालेंगे, तो 10 योग हो गए। तो सामान्य कथन क्या है, तीसरे गुणस्थान के लिए प्रत्यय कितने हैं, 12 और 21 और 10 31 और 12 43 प्रत्यय है, परंतु अब बात है मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी को बांधने वाले के कौन से प्रत्यय हो गए। तो हमने देखा है तीसरे गुणस्थान वाला मनुष्य और तिर्यंच मनुष्य गति को नहीं बांधता, तो मनुष्य गति को कौन बांधेगा, देव और नारकी बांधेगा। तो देव और नारकियों में औदारिक का योग नहीं होगा, मिश्र तो हमने पहले ही निकाले हैं, देव और नारकियों में तो वैक्रिक का योग होगा, मनोयोग हो गए, वचन योग हो गए, परंतु ये औदारिक का योग नहीं होगा। इसलिए यहाँ क्या लिखा देखिए, हम इसको फिर से पढ़ते, विशेषता क्या है, सम्यक मिथ्या दृष्टि के यानी तीसरे गुणस्थान वाले के 42 प्रत्यय कहना चाहिए, क्योंकि उसके औदारिक का योग प्रत्यय का अभाव है। इसका अर्थ ख्याल में आता है, अभी हमने सामान्य से जनरल बात करेंगे तो तीसरे गुणस्थान वाले में 43 प्रत्यय होते हैं, परंतु तीसरे गुणस्थानवर्ती मनुष्य और तिर्यंच जिसको औदारिक का योग होता है वो तो देवगति बांधते हैं, मनुष्य गति को नहीं बांधते। तो मनुष्य गति बांधने वाले को औदारिक का योग नहीं होगा, तीसरे गुणस्थान की बात है, पहले दूसरे में तो हमने उसको लिया था, इसलिए उसको कम करेंगे तो 10 के बदले यहाँ 9 योग में से एक योग होगा, इसलिए इनकी संख्या 42 होगी, प्रत्ययों की संख्या 42 होगी। ये ऐसा क्यों कहा है उसको हमको समझना है, उन्होंने तो डायरेक्ट उत्तर बता दिया है, ख्याल है इसका कारण। हाँ अब असंयत सम्यक दृष्टि के हम जनरल बात करते हैं सामान्य से, तो असंयत सम्यक दृष्टि में कितने होते हैं, वो 43 में ये 3 जो हमने मिश्र निकाले थे वो उसमें मिला देते हैं, 46 होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, औदारिक मिश्र को भी और निकालना, पहले 42 हुए थे, 43 में से 42 ही हुए थे, अब यहाँ देखो तो वहाँ 46 के बदले में अभी यहाँ भी कम हो जाएंगे। हाँ देखो असंयत सम्य दृष्टि के 44 प्रत्यय कहना चाहिए, हमेशा हम कितने देखते थे 46, अभी उसमें औदारिक को भी निकालना और औदारिक मिश्र को भी निकाल लेना, क्योंकि औदारिक मिश्र वाला जो है सम्यक दृष्टि होगा वो भी देवगति को बांधता है, औदारिक मिश्र ने देव में से मर कर आया है सम्यक दृष्टि या नारकी में से, और अभी अपर्याप्त अवस्था है तभी भी वो गति बांध रहा है, तभी भी वो देवगति को ही बांधता है, मनुष्य गति का बंध वहाँ भी नहीं करेगा, सम्यक दृष्टि मनुष्य है वो, इसलिए औदारिक मिश्र का योग को भी इसमें से निकाल दिया। तो असंयत सम्य दृष्टि के 44 प्रत्यय कहना चाहिए, हमेशा हम 46 कहते हैं, उसके बदले औदारिक और औदारिक मिश्र दोनों निकालना का योग तो भी 44 हो जाएंगे, क्योंकि उसके औदारिक का योग और औदारिक मिश्र का योग प्रत्ययों का अभाव है। अभाव है का अर्थ है ये मनुष्य है औदारिक मिश्र वाले, हाँ वो तो देवगति को ही बांधेंगे, औदारिक मिश्र वाले तिर्यंच क्या बांधेंगे, सम्यक दृष्टि होगे कि नहीं होगे, औदारिक मिश्र तिर्यंच होगे कि नहीं होगे, सम्यक दृष्टि हाँ कहाँ होगे, भोग भूमि के तिर्यंच, सम्यक दर्शन के साथ जो भोग भूमि में गए हैं, जिन्हें तिर्यंच आयु बांधी है, बाद में सम्यक दर्शन प्रकट किया है, बाद में क्षायिक हो गए हैं, वो क्षायिक के साथ वहाँ जन्मेंगे तो वहाँ अपर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र का योग चल रहा है और देवगति बांध रहे, वहाँ भी ऐसी पोजिशन होंगे। देखो अभी इसी प्रकार औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और वज्रषभ सहनन के भी प्रत्ययों की प्ररूपणा मनुष्य गति नाम कर्म के समान करना चाहिए। ये भी वज्रषभ नारा सहनन मनुष्य तीसरे चौथे वाले को नहीं, क्योंकि वे देवगति बांध रहे, देवगति के साथ किसी भी सहनन का बंधन नहीं होता। नारकी और देव सम्यक दृष्टि है, वो मनुष्य गति बांध रहे हैं, तो उनके तो वज्रषभ नारा सहनन ही बंधेगा, प्रशस्त है ना वो, और वो सम्यक दृष्टि है तो प्रशस्त प्रकृति को बांध रहे वहां पर। औदारिक शरीर बांधते हैं, औदारिक शरीर अंगोपांग बांधते हैं, उसकी भी बात ऐसी है। जैसे मनुष्य गति के बारे में रूल बताया तो अभी हमने देखे मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक, औदारिक अंगोपांग और वज्रषभ नारा सहनन। यहाँ लिखा नहीं मगर मनुष्यायु भी इसके साथ लेना। ये छह प्रकृतियों के बंध की विच्छित थी, देवों के लिए तो चौथे गुणस्थान में होती है जो हमने अपने टेबल में लिखी है, परंतु मनुष्य और तिर्यंचों के लिए इनको दूसरे में ही कहना। दूसरे तक इसका बंध होगा मनुष्य तिर्यंचों को, इसके आगे उनके लिए वो बंध नहीं होगा, ख्याल आता है ना। इसलिए ये जो विशेषता बताई है प्रत्यय वहां उतने कम हो जाते हैं। अब कौन से गति संयुक्त वे बांधते हैं उसकी बात करेंगे। गति संयुक्त है, कौन सी गति का बंध हो रहा है तो इनको भी बांध रहे हैं, ऐसी बात है। तो कहेंगे अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क को मिथ्या दृष्टि जीव है, वो चार गतियों से संयुक्त बांधता है। सासादन सम्यक दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि को नरक गति का बंध ही नहीं होता, क्योंकि नरक गति के बंध की विच्छित्ति पहले गुणस्थान में होती है। तो सासादन सम्यक दृष्टि अप्रत्याख्यानावरण को बांध रहा है, परंतु वो तीन गति के साथ इसको बांध रहा है, देव गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति। शेष दोनों गुणस्थानवर्ती जीव देव व मनुष्य गति से संयुक्त बांधते हैं। इसका अर्थ है तीसरे और चौथे गुणस्थान वाले जीव अप्रत्याख्यानावरण को बांधते हैं, तो कोई तो देव गति के साथ अप्रत्याख्यानावरण को बांधते हैं और कोई मनुष्य गति के साथ अप्रत्याख्यानावरण को बांधते हैं। वो स्वामित्व में ये क्लियर होगा क्या कि जो देव है तीसरे चौथे गुणस्थानवर्ती, वो अप्रत्याख्यानावरण कर्म बांधते हैं तो उसके साथ वहाँ मनुष्य गति बनती है, और जो मनुष्य तिर्यंच है तीसरे चौथे गुणस्थान वाले, वो देवगति को बांधते हुए अप्रत्याख्यानावरण का बंध। अप्रत्याख्यानावरण तो चारों गति के जीव बांध रहे, भले किसी भी गुणस्थान के हो, परंतु किस गति के साथ बांधते हैं इसके, इसमें डिफरेंस है। अब मनुष्य गति और मनुष्य गति प्रायज्ञानुपूर्वी को सर्व गुणस्थानों के जीव मनुष्य गति से संयुक्त बांधते हैं। मनुष्य गति बांधने वाले को ही मनुष्य गति बनती है, ऐसा कह रहे। औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग को मिथ्या दृष्टि और सासादन सम्य दृष्टि तिर्यक गति एवं मनुष्य गति संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि पहले और दूसरे गुणस्थानवर्ती किसी भी गति का जीव होगा वो ये इसको बांधता है, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, मनुष्य गति वगैरह। जो मनुष्य गति का बंद कर रहा है उसी को मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी बंधेंगे। तो इन्हें गति के साथ और दूसरी गति नहीं बन रही, हाँ वही बन रही है। देखो यह क्या लिखा, ये चौथी लाइन पढ़ रही, औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग को मिथ्या दृष्टि और सासादन सम्यक दृष्टि तिर्यक गति एवं मनुष्य गति संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि जो मनुष्य या तिर्यंच गति का बंध करता है वही तो औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग को बांधेगा, जो देव गति का बंध करता है वो वैकृक वैकृक अंगोपांग को बांधेगा। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य गति से संयुक्त बांधते हैं, यानी अपने समझ के लिए ऐसा पढ़ना इसको कि सम्यक मिथ्या दृष्टि और असम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि, देव और नारकी जो है वे जीव मनुष्य गति के संयुक्त इसे बांधते। किसको, किसकी बात चल रही है? औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग की। तीसरे चौथे गुणस्थान वाले देव और नारकी औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग को बांधते हैं तो मनुष्य गति संयुक्त बांधते हैं, उसके साथ मनुष्य गति का बंध करते हैं। इसी प्रकार वज्रषभ वज्रनारा सहनन का भी गति संयोग कहना चाहिए, क्योंकि उक्त प्रकृतियों से इसके कोई भेद नहीं है। ये सभी एक साथ लेने, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपुरी औदारिक औदारिक अंगोपांग और वज्रषभ नारा सहनन, इन्होंने अलग अलग करके बताया है, रूल तो सबके लिए एक ही है। अब इस बांधने वाले जीव कौन से गति के हैं, इसकी बात चलेगी। हाँ, नहीं बांध सकते, क्योंकि जो मनुष्य और तीर्यंच तीसरे चौथे गुणस्थान वाले हैं उन्हें तो देवगति ही बनती है। तीसरे चौथे वाले को हम नहीं थे सम्यक दृष्टि मनुष्य है, बाद में अभी पहले जो कुछ बंध हुआ उसकी बात नहीं है, उस गुणस्थान में जब तक है तब तक बंध कौन सा करे तो देवगति का करे, गति की बात है। अब ये बांधने वाले जीव कौन से गति के हैं वो बात अब करेंगे। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क के बंध के चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि सासादन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि स्वामी है। चारों गुणस्थान में चारों गति के जीव इसका बंध करते हैं। अप्रत्याख्यान के बारे में तो कोई यानी कोई विशेषता नहीं है। अब जो अन्य जो पांच प्रकृतियां यहां बताई है, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी उसी को कहते हैं, उसी को गत्यानुपूर्वी भी कहते हैं। औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग और वज्रषभ वज्रनारा सहनन प्रकृतियों के चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि व सासादन सम्यक दृष्टि स्वामी है। पहले दो गुणस्थानों के जीव जो है वो चारों गतियों के जीव इसको बांध सकते हैं, मनुष्य गति की बात है ना। हाँ। दो गतियों के कौन से दो गति, देव और नारकी सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि स्वामी हैं। पहले क्या कहा, चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि और सासादन सम्यक दृष्टि। अब कहते देव और नारकी इन दो गतियों के तीसरे और चौथे गुणस्थान वाले स्वामी हैं, बांधने वाले जीव। बंध अधवान का अर्थ क्या देखा याद है, बंध की मर्यादा कहां से कहां तक, तो वो तो सूत्र में ही बता दिया पहले से चौथे तक। और बंध नष्ट प्रदेश यानी बंध विच्छित्ति कहां होती है उसको कहते हैं बंध नष्ट प्रदेश, अर्थात जिस स्थान तक बंध होता है तथा जहां बंध की विच्छित्ति होती है वह जानना भी सुगम है, क्योंकि वो सूत्र में आया हुआ है। अब ये कौन सा प्रकार है, ध्रुवबंदी है क्या सादी है क्या अनादि है क्या निरंतर है, उसकी बात अब करेंगे। चार प्रकार कौन से थे, सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्का का बंध मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में चारों प्रकार का है, क्योंकि ये चारों प्रकृतियां प्र रह गया ध्रुवबंदी है, ध्रुवबंधी यानी अनादि से जिनका बंध चला आ जाता है जब तक उसकी विच्छित्ति न हो। ऐसे हमने 47 प्रकृतियां ध्रुवबंधी देखी थी, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय मिथ्यात्व सोलह कषाय भयुगुप्सा वगैरह वगैरह, तो ये सोलह कषाय में ये भी आ गई ना, तो ये ध्रुवबंधी प्रकृति है। हर समय चारों का ही बंध होता है, उदय भले क्रोध का हो या मान का हो या माया का हो या लोभ का हो, बंध सबका होगा, तो ये ध्रुवबंदी है। तो ध्रुवबंदी प्रकृतियों में चारों प्रकार का बंध पाया जाता है मिथ्यात्व गुणस्थान में। सादी क्यों, क्योंकि ऊपर के गुणस्थानों में आता है फिर नीचे तो फिर दोबारा उसका बंध शुरू होता है, इसलिए सादी कहने में आता है। अनादि है क्योंकि जब तक विच्छित्ति नहीं तब तक अनादि का है। ध्रुव है क्योंकि ध्रुवबंदी प्रकृति है और अभव्य में कभी उसका नाश नहीं होने वाला, इसलिए ध्रुव कहेंगे। और बहुवे जीवों में वो आगे चलकर विच्छित्ति हो जाएगी, इसलिए अध्रुव कहते हैं। तो ये चारों प्रकार का है, चारों प्रकार का है ना, सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव। शेष गुण स्थानों में इनका बंध तीन प्रकार का है, क्योंकि वहां ध्रुव बंध नहीं होता। शेष गुणस्थान है दूसरे से ऊपर के गुणस्थान, वे भव्यों में हो गए कि अभव्यों में हो गए पिनांग भाई? हाँ, भव्यों में ही हो गए, तो उनका वो तो आगे चलकर मिटने ही वाला है, इसलिए उसको वो ध्रुव बंध नहीं होगा, अध्रुव अभी हो जाता है। ये तो अप्रत्याख्यान की बात करेंगे। अब मनुष्य गति, औदारिक शरीर, औदारिक शरीर अंगोपांग, ये मनुष्य गति के बाद एक कॉमा लगाना। वज्रषभ, वज्रनारा, सहनन और मनुष्य गति प्रायज्ञानो पूर्वी नाम कर्म का बंध सब गुण स्थानों में सादी और अध्रुव है। अब ये सादी क्यों कहा? सभी गुण स्थानों में हो, सभी ने कहां से कहां तक? पहले से चौथे तक। तो सभी गुण स्थानों में सादी है। और प्रत्याख्यानावरण का तो अनादि और ध्रुव कहा था और चारों प्रकार का कहा था। अब यहां सादी कहने का क्या कारण है? नहीं नहीं, चार गति में से एक गति बनती है, ऑप्शनल बनती है ना, क्योंकि ये प्रतिपक्षी है अनादि। जैसे ज्ञानावरण में कोई प्रतिपक्षी है ही नहीं, सभी के सभी बनते चले जाते, इसलिए उसमें तो वो तो अनादि का ही कहा और ध्रुव ही कहा था। अब यहाँ क्या बात है? मिथ्या तो गुणस्थान में तो चारों गतियों में से एक गति बंधेगी, दूसरे में भी तीन में से तो एक बंधेगी, तीसरे चौथे वाले को भी, देवों को नारकियों को तो बंधेगी, वहां तो भले आप निरंतर भी कह सकते हैं, तीसरे चौथे गुणस्थान में और देवों में। या जैसे हमने आनत प्राणत वगैरह की बात देखी, वहां उनके भले निरंतर कह सकते हैं, पर यहाँ निरंतर की बात अभी नहीं ली है, यहाँ सादी और अध्रुव की बात है, तो उसमें बिगिनिंग है ना, इसलिए सादी का। सादी और अध्रुव, अध्रुव क्योंकि ये भी अभी मिटने वाला है, मिटता ही है ना वो तो। वैसे गति, ये मनुष्य गति छुटकर भले मिथ्यात्वी हो तो भी ये बंद हो जाता है, अन्य गति का बंध शुरू हो जाता है। उसका कारण भी बताए, क्योंकि इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध संभव है। गति नाम कर्म बनता है, परंतु चार गति में से एक बंधेगी कोई गति, तो उसके प्रतिपक्षी वहां है। शंका, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर के बंध से रहित, यानी जो जीव वैक्रियक शरीर अंगोपांग को नहीं बांधते हैं, आहारक शरीर अंगोपांग को नहीं बांधते, ऐसे जीव लिए यहाँ कौन? ऐसे जो नित्य निगो दिया जीवों में, निगो करना निजो हुआ है, उनका कहना है नित्य निगोद जीव वैक्रियक और आहारक शरीर को बांध रहे क्या नहीं बांध रहे? बांध ही नहीं सकते वो, उनमें तो देवगति का बंध नहीं होता है। तो कहते हैं उनमें औदारिक शरीर का ध्रुव बंध और निरंतर बंध सदा क्यों नहीं कहा? प्रश्न ख्याल में आए? नित्य निगोद उसी को कहते जो अभी तक निगोद में से बाहर ही नहीं पड़े। तो अनादि से आज तक औदारिक शरीर का ही बंध कर रहे हैं। अंगोपांग को भी नहीं लिया यहां, अंगोपांग को क्यों नहीं लिया? वो तो निगोद है ना, लेकिन उनके अंगोपांग का उदय भी नहीं है और बंध भी नहीं है, क्योंकि नित्य है, तो फिर नित्य का ही निगोद का ही बंध कर रहे हैं। तो एक इंद्रियों में अंगोपांग कर्म नहीं होता है, तो एक इंद्रिय का बंध करते एक इंद्रिय जाती, तो औदारिक शरीर का तो बंध कर रहे, तो इसलिए ध्रुव बंध है। तो उनमें तो निरंतर और ध्रुव बंध को है, ऐसी बात है। प्रश्न ख्याल में आता है? नित्य निगोद की एक अलग उन्होंने बताया कि उनके लिए ये नित्य कहो तो आप निरंतर कहो उसको, ध्रुव कहो तो सदा क्यों नहीं कहा? समाधान, सदा नहीं कहा क्योंकि, यानी हमेशा उनके लिए कह दो नित्य निगोद के लिए, तो क्यों नहीं कहा? क्योंकि प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध शक्ति के सद्भाव की अपेक्षा करके। क्या कहे? भले नित्य निगोदी है, परंतु निगोद में से बाहर आते हैं तो अन्य बंध की शक्ति है, पड़ी है वहां पर। जैसे अभव्यों में शक्ति ऊपर के गुणस्थानों में जाने की, वो तो शादी बंद करने की या ध्रुव की उसकी शक्ति नहीं है, वैसे नहीं है यहाँ, उनमें बंध की शक्ति पड़ी है, उसकी अपेक्षा अनादि और ध्रुव बंध का प्ररूपण नहीं किया, एक बात ये हो गई। अथवा चतुर्गति निगोदों को छोड़कर, ये चतुर्गति निगोद किसको कहते हैं बिना ख्याल है? एक तो नित्य निगोद कहा, नित्य को छोड़कर जो निगोद है वो चतुर्गति निगोद, इसका अर्थ क्या होगा? हाँ नहीं, सूक्ष्म की बात नहीं है, इतर निगोद कहो या चतुर्गति कहो एक ही बात है, उसका अर्थ क्या होता है? हाँ, त्रस में जाने की जरूरत है क्या? हाँ, निगोद पर्याय को छोड़कर, निगोद पर्याय के अतिरिक्त अन्य एकेंद्रिय या त्रस जीवों में जाकर एकाद भी जन्म लिया हो, वैसे तो बहुत बार किया होगा, मगर फिर वापस निगोद में आते हैं तो उसको इतर निगोद या चतुर्गति निगोद कहते हैं। यानी एक भव उसने बाहर किया, अनादि से जो निगोद में ही पड़ा था वहां से निकलकर, हमने देखा ना 6 महीने और 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद में से बाहर आते, बाहर आते हैं अन्य एकेंद्रियों में या द्विंद्रिय आदि में जन्म लेते हैं, फिर दोबारा निगोद में जाएंगे तो उन्हीं जीवों को अभी हम इतर निगोद कहेंगे या चतुर्गति निगोद कहेंगे। अथवा चतुर्गति निगोदों को छोड़कर नहीं, डायरेक्ट निगोद में जाता ही नहीं देव और नारकियों में से, मनुष्य तिरियंचों में से दोबारा फिर निगोद में चले जाते हैं, पंचेंद्रिय जा सकता है। क्या वो बादर में जाते, देव जाएंगे तो बादर पर्याप्त में जाते हैं, तो इतर निगोद में जाने वाले मनुष्य और तिरियंचों में से जाएंगे। चतुर्गति में पहले भ्रमण किया है और वो वापस जा रहे हैं, लास्ट पोर्ट ऑफ डिपार्चर कहाँ से है वो तो मनुष्य और तिरंज में से जाएंगे। तो चतुर्गति निगोदों को छोड़कर, ये चतुर्गति निगोद यानी चारों गति में निगोद होते ऐसा नहीं है, चारों गति में घूमकर अभी वो वापस जा रहे हैं मायके, उसकी बात है। हमेशा कहते हैं ना उस शास्त्र में आती बात, अरे ये त्रस पर्याय और मनुष्य पर्याय हो सकता है ये अंतिम भव है, अभी जाना पड़ेगा फिर अपने हेड क्वार्टर में वापस। तो चतुर्गति निगोदों को छोड़कर नित्य निगोदों का यहाँ अधिकार नहीं है, ये बात उन्होंने क्लियर की, इसलिए भी उसकी बात यहाँ नहीं की। परंतु बंध की अभिव्यक्ति की अपेक्षा करके इनके बंध के अनादि और ध्रुव होने में कोई विरोध नहीं है। बंध की अभिव्यक्ति ने प्रकट बंध, उसकी अपेक्षा अगर लेंगे हम तो अनादि का कह सकते हैं निगोद में कोई विरोध नहीं। अब आगे ये जो हमने वहां प्रकृतियां देखी चौथे गुणस्थान में विच्छित्ति होने वाले, वहां मनुष्यायु को क्यों छोड़ा है पता नहीं, आगे लिया है ठीक है। अब ये प्रत्याख्यानावरण की बात करेंगे, यहां हम सूत्र नंबर 19 पढ़ते हैं, पच्चक खानावरणीय कोधमान माया लोभानम को बंधो को अबंधो, इसके साथ किसी प्रकृति को नहीं लिया, ये चार को ही लिया है। तो यहाँ बंध की विच्छित्ति पांचवे में होती है तो ये चारों की ही होती है, उसके साथ और दूसरी कोई प्रकृतियां नहीं है। प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध मान माया और लोभ का कौन बंधक और कौन अबंधक है यह सूत्र सुगम है। अभी तो थोड़ी थोड़ी विच्छित्ति कहाँ कौन सी होती ख्याल में आने लगा है, तो अभी हम उन प्रश्नों के जवाब भी हमें स्वयं को मिलेंगे, हम ढूंढेंगे फिर पढ़ेंगे। देखो उसका उत्तर 20वें सूत्र में देते हैं, मिच्छा इट्ठी पहुड़ी, पहुड़ी यानी वहां से लेकर, जाव संजदा संजदा संजयता संयत तक बंधा, एदे बंधा अवशेषा बंधा, ये बंधा के बाद वहां फुल स्टॉप देना चाहिए, दंड जिसको कहते हैं, नहीं एदे बंधा के बाद नहीं उसके पहले संजदा संजदा बंधा। जैसे देखो पहले भी हमने सूत्र पढ़े ना, फॉर एग्जाम्पल 18 नंबर का सूत्र 46 पृष्ठ पर, जाव असंजदी समाइठा बंधा, वहाँ स्टॉप देना, फुल स्टॉप। अब ये दूसरा वाक्य है, एदे बंधने इतने तो बंधक है, अवशेषा अबंधने रिमेनिंग जो है शेष जो है वो अबंधक है, तो उसकी बात हम अर्थ में पढ़ेंगे। उसके मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता संयत तक बंधक है, यहाँ भी फुल स्टॉप चाहिए, ये बंधक है, अवशेष अबंधक है, यह तो है के ऊपर बिंदी का तो कहीं ठिकाना ही नहीं है। ये मराठी लोगों ने लिखा दिखता है। यह देशामर्शक सूत्र है,
ये वर्ड का मतलब क्या?
देशामर्शक ना, देशामर्शक का अर्थ होता है थोड़ा बताया उसमें से बहुत मीनिंग अंदर गर्भित है, वो तो कहते ना थोड़ू लख्यू घणू आज जो। एक देश, देश है ना, एक देश, ये कथन में तो पार्शल बताया, कहां से कहां तक बंद होता है इतना ही बताया, उसमें से 23 प्रश्न हमको पता चलने चाहिए। यहाँ तो बंध ध्वन यानी बंध की सीमा बताई और उसके बंध के स्वामी कौन है उसको बताया, पहले से पांचवें गुणस्थान तक के जीव स्वामी है, फिर वो कौन से गति के संयुक्त बनता है, कौन से गति वाले जीव उसको बांध रहे हैं, वो शांतर है कि निरंतर है, वो ध्रुव है कि अध्रुव है, और फिर वो कौन से प्रत्यय से बनती है, ये बातें हम इसी में से डिराइव कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं देशामर्शक। बताया तो थोड़ा और उसमें से सभी गर्भित मीनिंग हमें ख्याल में आ सकता है। ये 8 नंबर के पृष्ठ पर 23 प्रश्न दिए, वो प्रश्नात्मक सूत्र में भी ये देशामर्शक कहेंगे और उत्तर में भी कहेंगे ये देशामर्शक है। प्रश्न में भी 23 प्रश्न गर्भित है और उत्तर में भी ये सारे उत्तर ढूंढ के हमको बताएंगे। देखो देशामर्शक क्यों कहा, क्योंकि वह बंध स्वामित्व और बंध अध्वान का ही निरूपण करता है, दो ही बातें बताए हैं, फिर भी उसमें से ये सारी बातें निकाल कर अभी हमको बताएंगे। कहा थोड़ा ही परंतु इसी सूत्र में से ये सारा अर्थ निकलता है, इसलिए इसको देशामर्शक कहा। इस कारण यहाँ अनुक्त अर्थों की प्ररूपणा कहते हैं, अनुक्त यानी जो कहा नहीं है, ये अनुक्त शब्द सुना था पहले, मति ज्ञान के विषयों में 12 प्रकार के विषय, क्षिप्र अक्षिप्र उक्त अनुक्त ऐसी बातें है ना, नहीं बताया फिर भी वो समझ में आता है, हाँ? ये अनुक्त शब्द है यानी नहीं बताया हुआ, वो अर्थ इसमें से गर्भित है, वह इस प्रकार है, वो हमें खोलकर बताएंगे, ऐसा नहीं कहना कि आप जान लो करके, हाँ? वो जानते थे, ये जान लो कहा तो कोई जानने वाला नहीं है। हम भी चलो हाँ वैसा ही है कहकर आगे बढ़ेंगे। इन चारों प्रकृतियों का बंध और उदय, अभी पहला प्रश्न था बंध पहले मिटता है कि उदय पहले मिटता है, आप कुछ कह सकते हैं इसके बारे में? हाँ पिना, ये किसकी बात चल रही है? प्रत्याख्यानावरण की चल रही है, तो प्रत्याख्यानावरण का उदय कहाँ तक है और बंध कहाँ तक है वो निकालो, आपका 3 नंबर का पेज उसमें देखकर बताओ, उदय कहाँ से कहाँ तक है और बंध कहाँ से कहाँ तक है, वो प्रस्तावना में है ना, वो टेबल बनाया उसमें देख लो, कौन सा नंबर का प्रश्न, पृष्ठ संख्या कौन सी थी, विषय परिचय में 3 परिचय, हाँ प्रत्याख्यानावरण ये नीचे से 3 लाइन में, देखो बंद कहाँ से कहाँ तक है 1-5 तक और उदय 1-5 तक, तो बंद पहले मिटेगा कि उदय पहले मिटेगा, कि दोनों साथ में, हाँ साथ में है, हाँ डरना नहीं है, हाँ। देखो अभी हम तो रोज इसको रिपीट कर रहे हैं, तो बाकी लोग उत्तर देंगे, आपको लगे अरे मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आने का कोई सवाल नहीं है, देख क्या कहते हैं, प्रकृतियों का बंध और उदय दोनों एक साथ विच्छिन्न होते, दोनों ही एक साथ नष्ट होते। हाँ, बंध की विच्छित्ति और उदय की विच्छित्ति पांचवें गुणस्थान के अंत समय में होती है। अंत समय तक उदय भी है और बंध है, क्योंकि संयता संयत गुणस्थान में बंध के समान इनके उदय का भी विच्छेद देखा जाता है। पांचवें गुणस्थान के अंत तक बंध भी और उदय भी है। इन चारों ही प्रकृतियों का बंध स्वोदय और परोदय से होता है। ये स्वोदय परोदय का अर्थ है चार है ना, क्रोध मान माया लोभ। तो क्रोध का उदय हो तो क्रोध भी बंधे और अन्य भी तीन बंधे। अन्य तीन बंधेंगे तो उसके लिए कहेंगे ये परोदय से बंधी है। परोदय ने वो अप्रत्यक्ष प्रत्याख्यान है और संज्वलन के उदय में बंधे की उसकी परोदय, उसको परोदय नहीं कहा। क्रोध मान माया लोभ आपस में स्वोदय परोदय कहा, क्योंकि क्रोधादिकों के बंध काल में उसका ही उदय भी होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। जब क्रोध का बंध हो रहा है तब मान माया लोभ क्रोध किसी का भी उदय हो सकता है। हमने देखा था ना, उदय तो हमेशा एक का ही होता है, एक कषाय का, या क्रोध या मान या माया और लोभ, और बनते चारों है। उसको ध्रुवबंदी कहा हमने, मिथ्यात्व और 16 कषाय तो ध्रुवबंदी है। अब आगे का प्रश्न, सांतर है कि निरंतर है, तो कहते हैं चारों का ही निरंतर बंध होता है। निरंतर क्यों? क्योंकि ये ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं, अनादि से बनती चली आ रही है, पांचवें गुणस्थान तक बंधेगी, क्योंकि ये चारों प्रकृतियां, ये करना उसको, ये हो गया 47 ध्रुवबंदी प्रकृतियों में गर्भित है, गर्भित है। ध्रुवबंदी हमने देखी थी ना, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, अंतराय की 5, मिथ्यात्व 16 कषाय, भयजुगुप्सा 19, 38 हुए, तेजस कारमान 40 हुए, वर्णादि 4, 44 हुए, फिर अगर लघु उपघात और निर्माण, ये 47 प्रकृतियां हर समय हर जीव को बनती आ रही है अनादि से। जब तक उसकी विच्छित्ति नहीं होगी तब तक ये 47 तो बंधेगी ही, इन एडिशन यथा योग्य दूसरे भी बंधेंगे। अब आगे मिथ्या दृष्टि आदि यानी वहां से लेकर 5 गुणस्थानों में जो मूल व उत्तर प्रत्यय कहे हैं, ये मूल प्रत्यय कौन से है? मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, ये मूल प्रत्यय। उसके उत्तर प्रत्यय 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अविरति, 25 कषाय और योग 15, उसमें से जो यथा योग्य हो गए उसको हम उत्तर प्रत्यय कहेंगे। तो हमने अभी तक बहुत बार देखा था ना, पहले गुणस्थान में कितने हैं उत्तर प्रत्यय, तो हमने देखा था 55 है, दूसरे में 50 हो जाते हैं, तीसरे में 43 होते हैं, चौथे में 46 होते हैं और पांचवे में 37 होते हैं। तो वे प्रत्यय यहाँ भी समझना चाहिए, उसमें भी एक समय की अपेक्षा से भी जघन्य और उत्कृष्ट, वो भी बात हमने बहुत बार देखी। तो जो जो प्रत्यय हमने अभी तक देखे उन्हीं प्रत्ययों से ये भी कर्म बनते हैं, अतएव उन गुणस्थानों में उन्हीं उन्हीं प्रत्ययों को कहना चाहिए, क्योंकि बंध प्रत्यय समूह का कार्य है। बंध क्यों होता है? प्रत्यय उसमें निमित्त है, उसका कार्य कहते हैं। अथवा अब दूसरी पद्धति से बताएंगे, इन प्रकृतियों के बंध का प्रत्यय प्रत्याख्यान प्रकृति का उदय सामान्य है। उदय सामान्य ने प्रत्याख्यान प्रकृति के बंध उदय में ही प्रत्याख्यानावरण का बंध होता है, और उसका उदय पहले से 5वे तक पाया जाता है। शेष कषायों का उदय और योग प्रत्यय नहीं है। क्या कहते हैं अन्य कषायों का, अन्य ने अभी संज्वलन कषाय, क्या संज्वलन के उदय में भी ये बनती है? क्योंकि संज्वलन का उदय तो पहले में भी पाया जाता है, पांचवें गुणस्थान में तो संज्वलन का भी उदय है, परंतु संज्वलन से इनका बंध होता है ऐसा मानेंगे तो छठे में तो संज्वलन है और प्रत्याख्यान का बंधन नहीं है, इसलिए दूसरी अपेक्षा से बता रहे कि शेष कषायों का उदय और योग प्रत्यय नहीं है, यानी उनके कारण ये बनते नहीं है, क्योंकि वो योग और वे कषाय तो आगे भी पाए जाते हैं, परंतु वहां इनका बंधन नहीं हो रहा है, इस अपेक्षा से उसको कह रहे हैं। देखो, क्योंकि पांचवें गुणस्थान के ऊपर उनके रहने पर भी इनका बंधन नहीं होता। उनके यानी कौन कौन रहते हैं, मिथ्या तो भी है, अन्य योग भी है, वहाँ वो है, प्रत्याख्यान आवरण का बंधन वहाँ नहीं है। संजय, हाँ, पांचवें गुणस्थान के ऊपर उनके रहने पर, उनके यानी उन प्रत्ययों के रहने पर भी प्रत्याख्यान आवरण का बंधन वहाँ नहीं हो रहा है। हास्य अरति अरति है, शोक भय जुगुप्सा है, सारे हैं। उसको पहले भी गिना था, उसके कारण पहले हमने उसको बंद होता ऐसा भी देखा, हास्य रति युगल या शोक रति युगल, वेद से भी हमने देखा ये प्रत्यय सारे गिनाए थे हमने। पांचवें गुणस्थान में 37 प्रत्यय गिनाए, या चौथे में हमने 46 गिनाए, तो उसमें मिथ्या तो कहा, नहीं नहीं, संज्वलन आदि प्रत्यय ऊपर पाए जाते हैं, मिथ्यात्व आदि प्रत्यय तो पहले से हमने देखे थे, पहले गुणस्थान से चले आ रहे हैं, परंतु वहां मिथ्यात्व के साथ वो संज्वलन वगैरह सबको साथ गिनाया था। अभी संज्वलन ऊपर के गुणस्थानों में भी है, ये हास्य रति वगैरह वो भी ऊपर के गुणस्थानों में है, परंतु प्रत्याख्यान आवरण का बंध वहां नहीं हो रहा, इसलिए अथवा कहकर ये दूसरी अपेक्षा भी बता दी। इनका कहना प्रत्याख्यान आवरण के उदय में ही प्रत्याख्यान आवरण का बंध होगा। वैसे वहां है तो प्रत्यय अन्य भी, मिथ्या तो भी है, पहले गुणस्थान की बात, मिथ्या तो भी है, अविरति भी, ये सब है। हाँ हाँ, चौथे गुणस्थान में 46 है, तो हाँ पांचवे में देखो हम हिसाब करेंगे। देखो अभी हमने इतने गिना है ना यहाँ, तो चौथे में और पांचवे में हम देखेंगे। चौथे में मिथ्या तो नहीं था, अविरति 12 है, कषाय कितने, 21, कषाय 21 और योग, हाँ आहारक और आहारक मिश्रण नहीं हो गए, 13, तो कितने हो गए, 46 हो गए। अभी पांचवे में क्या होगा, अविरति एक कम होगी, यानी 11 अविरति है, कषाय में अप्रत्याख्यान आवरण भी कम हो गए, 17 हो जाएंगे, और योग पांचवे में, पांचवा गुणस्थान है, तो मिश्र नहीं होगा ना। देखो पांचवे गुणस्थान, देखो मैं कब बताती हूँ, अभी योग में कितने योग है उसको पहले हम टोटल करेंगे। मन के 4, वचन के 4 और काय योग 7 है। 7 में औदारिक औदारिक मिश्र, ये काय योग की बात है ना, वैक्रेक वैक्रेक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कारमान। अभी हम गुणस्थानों में देखेंगे, पहले गुणस्थान में उसमें से क्या क्या नहीं हो सकता। आहारक आहारक मिश्र छठे वाले को ही होगा, आहारक शरीर जब बनाते हैं तब, तो पहले गुणस्थान में वैक्रेक होगा कि नहीं होगा, देवनारकी को होगा ना। हाँ, तो मन के 4, वचन के 4 और वो भी हो सकते हैं। कारमान होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि विग्रह गति में हो सकता है। दूसरे गुणस्थान में भी यही बात है, बराबर। अब तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं है, तो मरकर अपर्याप्त तो हो जावे ऐसी बात नहीं है, इसलिए वो मिश्र वाले नहीं होंगे। आहारक तो पहले ही निकाला था 2, अभी औदारिक मिश्र भी नहीं होगा, वैकरिक मिश्र भी नहीं होगा और कारमान भी नहीं होगा, तो वहां तो 10 ही योग होते हैं तीसरे गुणस्थान में। चौथे गुणस्थान में ये मिश्र हो सकते हैं, क्योंकि मरकर चौथे गुणस्थान के साथ अन्य गति में जाता है, तो अपर्याप्त अवस्था में वो होते हैं, उसको औदारिक मिश्र भी हो सकता है, वैकरिक मिश्र भी हो सकता है, कारमान भी हो सकता है। तो फिर उसको दोबारा लेना तो 13 हो गए। अब पांचवे गुणस्थानों की हम योगों की बात कर रहे हैं। देखो चौथे में हमने देखा था ना 13 हुए थे चौथे वाले को, पांचवे वाले को अभी पांचवा गुणस्थान कितनी गतियों में उसको पहले बताओ, और तिर्यंश में मनुष्य और तिर्यंश कोई बात नहीं, यानी देवों में नहीं होगा। तो ये हमने जो नरक और देव में नहीं होगा, मनुष्य और तिर्यंशों में होगा। तो वैक्रेक और वैक्रेक मिश्र दोनों को निकालना, कारमान को भी निकाल देना, क्योंकि पांचवें गुणस्थान के साथ कोई विग्रह गति में नहीं आता। अब औदारिक मिश्र में किसी को पांचवा गुणस्थान होगा क्या नहीं होगा, कहीं से सम्यक दृष्टि जो है वो मरकर आया यहाँ मनुष्य गर्भ में आया, तो गर्भ में उसको पांचवा गुणस्थान होगा कि नहीं, नहीं होगा, आठवें साल के बाद होगा। तो औदारिक मिश्र को भी निकालना। तो हमने यहाँ जो 13 पकड़े थे उसमें से वैक्रिक मिश्र वैक्रिक दोनों निकाले, कारमान निकाला और औदारिक मिश्र को भी निकाला। तो अभी 9 ही योग पांचवे वाले को हो गए, ये ख्याल में। तो ये हमने यहाँ देखा था पांचवे वाले में 11 अविरति 17 कषाय और 9 योग, ये 37 हमने टोटल। आपने पूछा था ना अभी 37 कैसा हुआ, थोड़ी रिवीजन करते जाएंगे तो याद हो जाएगा उसमें। पहले में पहले समझने में टाइम लगता है, बाद में याद नहीं रहता कोई बात नहीं। हाँ छठे में दो आहारक मिश्र वाले बढ़ेंगे और कुछ कम होगा क्या, नहीं ये तो सभी चले गए हैं, अविरति सभी उड़ जाएगी और 4 कषाय भी चले जाएंगे, 11, 4, 15 चले जाएंगे और 2 आएंगे योग छठे वाले को। अभी यहाँ तो हम पांचवे तक ही देख रहे हैं क्योंकि अब प्रत्याख्यानावरण की बात चल रही है। हाँ ये अच्छा मेंटल एक्सरसाइज है क्योंकि एक बात को पकड़ते तो दूसरी स्लिप हो जाती है। समझा नहीं, क्या प्रश्न है? कर्मभूमि के सम्य, हाँ परंतु मिश्र अवस्था में होगा क्या नहीं होगा, हाँ तो पर्याप्त अवस्था में होता, तो इसमें क्या वो मनुष्य की अपेक्षा, हमने कहा मनुष्य की अपेक्षा की बात है ना, और सम्मूर्छन में कितने काल के बाद होता है, वो वेदक सम्यक्त्व की बात है, उपशम सम्यक्त्व के लिए तो पृथक। कर्मभूमि की बात देखो आगे बढ़ेंगे, ये योग ख्याल में है। देखो ऊपर के गुणस्थान में इनका बंधन है, यहाँ आए हम 51 पृष्ठ पर, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण प्रकृतियों का उदय भी इन प्रकृतियों के बंध का प्रत्यय नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके उदय के बिना भी इनका बंध पाया जाता है, ये अविनाभाव सिद्ध हो रहे कर रहे हैं। क्या पहले में पहले बताया संज्वलन का उदय इनके बंध का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि इनका उदय मिटता है संज्वलन का उदय चलता है फिर भी इसका बंध नहीं होता। अब दूसरी ओर से बता रहे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान के उदय से भी इनका बंध नहीं होता, क्यों नहीं बंध होता, उनका तो उदय मिट जाता है चौथे में फिर भी इनका बंध चालू है, उनके कारण इनका बंध होता तो यहाँ भी होना चाहिए, वहां तो उसके साथ प्रत्याख्यानावरण है तो उसके कारण इसका बंध होता है, यानी दोनों ओर से बताए ना, जिसके होने पर ये होता है और जिसके नहीं पर नहीं होता उसको उसका कारण उसका अविनाभाव कहेंगे हम, अन्वय व्यतिरिक दोनों ओर से व्याप्ति सिद्ध करते उसको कहते हैं, जिसके होने पर होता है जिसके नहीं होने पर नहीं होता। धुआं है वो अग्नि के होने पर होता है और अग्नि के नहीं होने पर नहीं होता, ये धुआं के नहीं होने पर अग्नि नहीं होता वो बात नहीं कह रहे. धुआं है वो अग्नि को सिद्ध करता है, क्योंकि बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता. जहां धुआं है वहां अग्नि है, और अग्नि नहीं है वहां धुआं नहीं है, ऐसा इस तरह से व्याप्ति लेनी उसकी. उसको अन्वय से और व्यतिरेक से सिद्ध किया ऐसा कहेंगे. दूसरी भाषा में उसी को अविनाभावी संबंध कहेंगे. आगे लिखा देखो, जिसके अन्वय और व्यतिरेक के साथ जिसका अन्वय और व्यतिरेक होता है वह उसका कार्य और दूसरा उसका कारण होता है. जैसे हमने अभी देखा ना, अन्वय यानी जिसके होने पर जो हो, जैसे अग्नि के होने पर धुआं होता है, यह अन्वय से सिद्ध किया. व्यतिरेक अग्नि जहाँ नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है, वो व्यतिरेक से सिद्ध किया, इसलिए अग्नि यह उसका कारण कह सकते हैं. जहाँ अन्वय व्यतिरेक दोनों ओर से सिद्ध होता है उसको उसका कारण कहने में आता है. ये उपादान कारण की बात नहीं चल रही है. और यह बात प्रत्याख्यानावरण के उदय को छोड़कर अन्यत्र है नहीं. अब यहां जब प्रत्याख्यानावरण के बंद की बात चल रही है, तो प्रत्याख्यानावरण के उदय होने पर इसका बंद होता ही है, और जहां प्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं है वहां इसका बंद भी नहीं है. इसलिए प्रत्याख्यानावरण का उदय ही अपने बंध का प्रत्यय है, अपने ने उसी के प्रत्याख्यानावरण के बंध का प्रत्यय है, यह बात सिद्ध हुई. ये उन्होंने न्याय से सिद्ध कर दी है. इसको न्याय कहते हैं, अन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध करना, इसको ये न्याय की भाषा कहने में आती है. अब मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में विच्छिन्न हुई 16 प्रकृतियों के बंध का प्रत्यय मिथ्यात्व का उदय ही है. हमने मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्छित होने वाले 16 प्रकृतियां देखी थी, याद है? हाँ बोलो. मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, असमरा सुप्राटिका सहनन, एकेन्द्रिय स्थावर आतप, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, बेन्द्रिय तीन्द्रिय चतुरेन्द्रिय, हाँ नरगति नरगत्यानुपुरी नरकायु. और क्या रह गया? नपुसक वेद रह गया. ये ऑर्डर अपना थोड़ा चुक गया ना, इसलिए हाँ इसलिए वो भूल गए. कोई बात नहीं. 16 ये प्रकृतियों की विच्छित्ति होती है, उसमें उसमें उसके लिए बंध का क्या कारण है? तो मिथ्यात्व ही उसके बंध का कारण है. तो मिथ्यात्व का उदय ही उसका प्रत्यय है, उसका उन 16 प्रकृतियों का प्रत्यय. प्रत्यय ने बंध का कारण कौन है? तो मिथ्यात्व का उदय, क्योंकि उनके उसके बिना उन 16 प्रकृतियों का बंध नहीं पाया जाता है. मिथ्यात्व के उदय में पाया जाता है. मिथ्यात्व का उदय जहाँ न हो वहाँ उनका बंध नहीं पाया जाता. मैं आपको पूछूंगी, मिथ्यात्व गुणस्थान में अनंतानुबंधी का भी उदय होता है, तो अनंतानुबंधी के उदय से ये प्रकृतियों का बंध ऐसा कहो तो दूसरे में भी होना चाहिए, एक बात. और दूसरी बात, जब अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाला गिरकर मिथ्यात्व में आता है तो भी इनका बंध पाया जाता है. मिथ्यात्व का वहाँ उदय है, अब अनंतानुबंधी का उदय नहीं है वहाँ पर, फिर भी बंध है, तो ये मिथ्यात्व से ही बनते हैं. ये ऐसे कोई अभी नया फैशन निकला था ना, किसी ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया, मिथ्यात्व बंध का बंध में अकिंचित करें, यानी मिथ्यात्व से कोई बंध बिंद नहीं होता, कषाय से होता है. ये देखो, ये मिथ्यात्व मिथ्यात्व गुणस्थान में तो मिथ्यात्व से ही, वो उसके उदय से ही इतनी सारी प्रकृतियां बन रही है. देखो, उसके बिना 16 प्रकृतियों का बंध नहीं पाया जाता. अब सासादन गुणस्थान की बात करें, सासादन गुणस्थान में विच्छिन्न हुई 25 प्रकृतियों के बंध का अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय ही प्रत्यय है, क्योंकि उसके बिना इन 25 प्रकृतियों का बंध नहीं पाया जाता. वो 25 याद है ना? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, हाँ, तीन निद्रा, स्थान, वृद्धि, निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला, फिर वो संस्थान और सहनन, उसमें नगरोध परिमंडल स्वाति कुब्जक वामन ये संस्थान, और सहनन बीच वाले वज्र नाराज नाराज अर्ध नाराज और कीलित। तिर्यंच गति संबंधी भी, तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी तिर्यंचायु और उद्योत, फिर दुर्भग दुस्वर अनादेय स्त्रीवेद निज गोत्र और अप्रशस्त विहाय गति, ये 25 प्रकृतियां। तो वो वहां पर विच्छिन्न होती है, तो अनंतानुबंधी का उदय उसका प्रत्यय है कहेंगे हम। अब असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थान में ये जम क्यों मार दी चौथे की बात? देखो यहाँ तो विच्छित्ति की बात बता रहे, पहले में 16 की, दूसरे में 25 की, तीसरे का नाम छोड़ दिया यहाँ। हाँ क्या? हाँ, बंध की विच्छित्ति नहीं है, बंध नहीं है, ऐसा नहीं, बंध की विच्छित्ति नहीं है, जो बंध है वो चल रहा है वहाँ, कोई वहाँ तीसरे गुणस्थान के कारण मिट जावे बंध का, ऐसी बात नहीं है, इसलिए चौथे वाले को लिया। असंयत समय दृष्टि गुणस्थान में विच्छिन्न हुई नौ प्रकृतियों के बंध का अप्रत्याख्यानावरण का उदय कारण है, क्योंकि उसके बिना उनका बंध नहीं पाया जाता। ये चौथे तक बनती है और चौथे तक अप्रत्याख्यानावरण का उदय पाया जाता है। वो भी साथ है ना, यहाँ तो कषायों की भाषा में ही बोल रहे, मिथ्यात्व और कषायों की बात बता रहे, उसके साथ योग भी तो है, योग के बिना तो वो तो यानी कर्मों का ग्रहण ही नहीं होगा, उसके साथ वाला योग है, योग से तो प्रदेश और परमाणु का बंध होता है, परंतु यहाँ अन्य मिथ्यात्व और कषाय संबंधी उसकी बात चल रही है। वैसे अविरति भी है ही नहीं वहां पर, परंतु अविरति भी है वहां तो कषाय है मिथ्यात्व है उसके कारण वो अविरति भी चल रही है, तो उसमें मेजर रोल किसका है? तो ये मिथ्यात्व कषायों का है। हाँ। अभी प्रमत्त संयत तक आ गए। प्रमत्त संयत गुणस्थान में विच्छिन्न हुई, अभी पांचवे की बात तो हम कर ही आए इसलिए अभी उसको फिर दोबारा अलग से नहीं बताया। प्रमत्त संयत गुणस्थान में विच्छिन्न हुई छह प्रकृतियों के बंध का प्रत्यय प्रमाद है, जो छठे गुणस्थान का नाम ही प्रमत्त है ना, प्रमाद है, तो वहां तक वे बनती है। कौन सी है? अस्थिर, अशुभ, असातावेदनीय, अयशस कीर्ति, अरति और शोक, ये छह। ये प्रमाद उसका कारण है, क्योंकि उसके बिना उनका बंध नहीं पाया जाता। छठे के ऊपर प्रमाद नहीं पाया जाता तो इन प्रकृतियों का बंध भी नहीं पाया जाता। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानकर कहना चाहिए, जिसकी जहां तक विच्छित्ति होती है वहां उनको कहना, उसके साथ उसका अविनाभावी संबंध है। इन प्रकृतियों को, ये इन प्रकृतियों को किसकी बात चल रही है अभी? प्रत्याख्यानावरण की बात हम चल रहे हैं, क्योंकि उसमें वो उसके मूल प्रत्यय और उत्तर प्रत्यय उस पर से चर्चा ये निकली थी। अब ये कौन से गति संयुक्त बांधता है उसकी बात चल रही है, कौन से गति का बंध हो रहा है और उसके साथ साथ ये प्रत्याख्यानावरण का बंध हो रहा है, देव गति के साथ होगा। आप भूल कर रहे कुछ, मिथ्या दृष्टि इसको बांधेगा कि नहीं बांधेगा? तो उसके साथ चारों गतियां बांधेगी, तो मिथ्या दृष्टि जीव चारों गतियों के साथ इसका बंद करेगा। पहले से पांचवे तक की बात है, तो दूसरे वाला कौन से गति के साथ बांधेगा? तीन गति के, नरक को छोड़कर। तीसरे चौथे वाला मनुष्य गति और देव गति दोनों, क्योंकि उसके स्वामी अलग अलग है, देव और नार की है, वो मनुष्य गति के साथ इसका बंद करेंगे, और मनुष्य तिरंज है वो देवगति के साथ इसका बंद करेंगे। अब पांचवे गुणस्थान वाला देवगति बांध रहा है उसके साथ इसको बांध रहा है, आपने डायरेक्ट उसको बताया। हाँ देखो, अब यहाँ पढ़ेंगे हम, इन प्रकृतियों को मिथ्या दृष्टि यानी मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो चारों गतियों से संयुक्त है, यानी चारों गति बांध रहा है, उसके साथ साथ प्रत्याख्यानावरण को भी बांध रहा है। सासाधन समय दृष्टि नरक गति के बिना तीन गतियों से संयुक्त है, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि, देव गति एवं मनुष्य गति से संयुक्त। अभी कौन बांध रहा है उसकी बात वो स्वामित्व में कहेंगे, परंतु जनरल बात कर रहे हैं, मनुष्य गति के साथ भी बन रही है और देव गति के साथ भी बन रही है। तथा संयता संयत देव गति से संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि पांचवें गुणस्थान वाले एकमात्र देव गति को ही बांधते हैं और उसके साथ ये प्रत्याख्यान और भी बन रही है। अब ये स्वामी बता रहे चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि जीव इन प्रकृतियों के बंध के स्वामी हैं, यानी इनको बांधते हैं। चौथे गुणस्थान तक तो चारों गतियां होती है, दो गतियों को प्राप्त हुए संयता संयत जीव स्वामी है। कौन से दो गतियां होगी? हाँ पीनांग, बांधने वाले जीव। पांचवें गुणस्थान वाले कौन से जीव हो गए? के बहुत अच्छा, मनुष्य और तिरियंच संयता संयत, दो गतियों के लिखा, ये हमें समझना चाहिए ना, स्वामी है। बंधाद्वान ने बंध की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, सीमा उसकी पहले से पांचवे तक, और बंध विनष्ट स्थान, ये दो बार स्थान स्थान हुआ है, यानी बंध विच्छित्ति की जगह उसकी कौन सी है, वो सुगम है, क्योंकि वो बता दिए पांचवे के अंत समय में। अब ये सादी है क्या अनादि है उसकी बात करेंगे। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में हमने देखा था ये ध्रुवबंधी प्रकृति है, प्रत्याख्यानावरण कषाय ना, मिथ्यात्व और सोलह कषाय ध्रुवबंधी है, तो उसमें चारों ही प्रकार का बंध मिथ्यात्व गुणस्थान में पाया जाएगा, सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव, वो हमने कौन सी अपेक्षा से वो भी देखा था। तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में इनका सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव के भेद से चारों प्रकार का बंध है, क्योंकि ये 47 ध्रुव बंध प्रकृतियों में आती है। अभी हमने 47 गिनाई थी ना, आपने याद है ना, हमने गिनाई थी उतना याद है ना, हमने वो प्रकृति याद नहीं करने को कहे, हाँ ध्रुव बंधी वो 47 होती है इतनी तो याद है, हाँ उसमें आती है। उपरिम गुणस्थानों में, ऊपरी मैंने दो से लेकर कहाँ तक, पांचवे तक, प्रत्याख्यानावरण की बात है ना, पांचवे तक तीन प्रकार का बंध है। कौन से तीन का होगा, कौन सा नहीं होगा? अभी हमने सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव देखे, उसमें से किसको कैंसिल करना चार में से? ध्रुव को, क्योंकि ये भव्य जीव है, इसलिए अभी उनके लिए ध्रुव बंध नहीं रह सकता, वो तो मिटने वाला है। तीन प्रकार का बंध, देखो उपरिम गुणस्थानों में तीन प्रकार का बंध है, क्योंकि वहां दो प्रकार के बंध का अभाव है, यानी दो प्रकार का बंध नहीं होता, तीन प्रकार का होता है ऐसा कहते हैं। यानी सादी और अध्रुव ऐसा नहीं होता, सादी अनादि और अध्रुव ऐसा तीन प्रकार का होता है। ध्रुवबंदी में वो ऊपर के गुणस्थानों में तीन प्रकार का होता है। नहीं नहीं ऊपर भी है ना, दुविहा भावा दो, देखो क्या कहना चाहते हैं, अन्य जो प्रकृतियां हैं उसमें तो दो प्रकार का ही होता है, सादी और अध्रुव। अब इन ये ध्रुवबंदी होने के कारण वो ध्रुव वाला निकाला, सादी अनादि और अध्रुव ये तीन रह गए वहां से। हाँ वो तो उनको ऐसा भी लिख सकते, चार नहीं है दो तीन होते हैं, तो उन्होंने दो नहीं तीन होते ऐसा कह दिया। अब आगे देखते हैं हम 21 नंबर का सूत्र, पूरी सवेद कोद संजलनानम को बंदो को अबंदो, पुरुष वेद का बंधक कौन है, कहां से कहां तक होता है, नौवे तक होता है ना। हाँ देखो पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध का, अकेले संज्वलन क्रोध को लिया है, अभी नवे गुणस्थान की पूरी विच्छित्ति नहीं ली है। पूरी विच्छित्ति कितनी होगी नवे गुणस्थान में? हाँ बंधक मायलोप को क्यों छोड़ा? बंध में एक वेद यानी पुरुष वेद, बंद तो एक वेद का ही होता है, उदय तीनों वेद के होते हैं, बंद एक पुरुष वेद का, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, ये क्रम से विच्छित्ति होती है। अभी यहाँ पर पुरुष वेद और क्रोध लिया है, क्रम से ले लेंगे एक एक को, पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध का कौन बंधक और कौन अबंधक है, यह सूत्र सुगम है, यानी प्रश्न समझ में आवे ऐसा है। अब उसका उत्तर कहते हैं, मिथ्या इट्ठी पहुड़ी, ये लिमिट बता रहे, मिथ्या दृष्टि से लेकर जाव, अनियट्ठी बादर सांप्राय पैठ उमा खवा बंधा, ये अनियट्ठी बादर सांप्राय प्रविष्ट उपशमक शमक, ये पूरा नाम है नौवे गुणस्थान के लिए, ये बंधा यानी बंध करने वाले हैं। अनियट्ठी बादर अध्याय, अध्याय ने काल, अनियट्ठी बादर काल में से संखे जा भागम गंतुण, संख्यात भाग जाने पर बंधो वोचित जदि, संख्यात बहुभाग जाने पर, संख्य जा भाग है हा? वो बताएंगे ना, अभी क्रम से बताएंगे। एदे बंधा अवशेषा बंधा, यहां तक बंध है अवशेष का बंद, वो अबंधक है यानी इसके बाद वाले अबंधक है, उसको समझाएंगे वो। इन दोनों प्रकृतियों के मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिकरण बादर सांप्रायिक प्रविष्ट उपशमक एवं क्षपक तक बंधक है। देखो हम तो अनिवृत्तिकरण इतना ही बताते हैं, परंतु उसमें कौन सा सांप्राय ने कषाय, अनिवृत्तिकरण में वो कषाय हो कैसा है, बादर है, इसलिए बादर सांप्रायिक कहा। प्रविष्ट उपशमक यानी उपशम श्रेणी वाले और क्षपक यानी क्षपक श्रेणी वाले, अपनी भाषा में नौवे गुणस्थान वाले उपशमक क्षपक, वहां तक बंधक है। अब वो कहाँ, उसका प्लेस कहाँ है, स्थान कहाँ है, क्या अंतिम समय में क्या पहले समय में, उसकी बात अब बता रहे। अनिवृत्ति बादर काल के शेष रहने पर संख्यात बहुभाग जाकर शेष रहने पर से संख्य जा भागम गंतुना, अनिवृत्ति बादर काल के शेष रहने पर संख्यात बहुभाग जाकर इनका बंध विच्छेद होता है, ये जीव बंधक है, शेष जीव अबंधक है। वो कैसे संख्यात भाग जाने पर, उसकी बात करेंगे भी, बहुभाग जाने पर। मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के संख्यात बहुभाग तक, यानी उसके संख्यात भाग करो, उसमें से बहुभाग बीत जाने पर इसकी विच्छित्ति होती है। नहीं नहीं, नवे गुणस्थान का संख्यात बहुभाग जाने पर इसके बंधे की विच्छित्ति होती है। अभी आगे बताएंगे, आपको ख्याल में आएगा। वो संख्यात बहुभाग तक उपशमक और क्षपक बंधक है, वहां तक तो बंध कर रहे हैं। इस सूत्रावयव से, सूत्र अवयव यानी सूत्र का ये भाग, हमारे कहते ना ये हाथ पैर हमारे अवयव है, वैसे इतना ही लिया ना उसमें से, सूत्र का वो नेक्स्ट पार्ट लिया है, उसका अवयव है, उससे गुणस्थानगत बंध स्वामित्व और बंध अध्वान का निरूपण किया है। यानी गुणस्थान की अपेक्षा उसकी लिमिट बता दी, बंध के स्वामी कौन है और उसकी बंध अध्वान यानी कहाँ से कहाँ तक होता है वो भी बता दिया। अभी वो संख्यात बहुभाग जाकर वगैरह वो बात तभी समझाएंगे। अब अनिवृत्तिकरण बादर काल के शेष रहने पर, ओ बादर काल के शेष रहने पर संख्यात बहुभाग जाकर बंध विच्छिन्न होता है, इससे बंध विच्छेद स्थान का निरूपण किया। वह इस प्रकार है, वो क्या है, देखो अनिवृत्तिकरण बादर काल का शेष रहने पर, बादर काल यानी उसमें भी उपशमक में तो बादर ही होते हैं सारे, उन क्षपक में हो तो एक एक की कृष्टि किरणें में आती है ना, क्रोध की होती है वगैरह वगैरह, उसकी बात अब यहाँ नहीं उठानी है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि हमने पहले देखा था ना, उसमें अंतर कर देता है, उदय रूप प्रकृतियों में अंतर हो जाता है, उदय अनुदय दोनों में, और फिर उसके बाद वो उपशमने का या क्षपना का कार्य शुरू हो जाता है। इसलिए उसके लिए वो संख्यात भाग बीत जाने पर ऐसा कहा, उसके बाद करेंगे शायद, देखते हैं। देखो फिर अनिवृत्तिकरण बादर काल के शेष रहने पर संख्यात बहुभाग जाकर बंध विच्छिन्न होता है, इससे बंध विच्छेद स्थान का निरूपण किया है। अब वो कैसा है उसको समझाते हैं, वह इस प्रकार है। शेष अर्थात अंतरकरण करने पर जो अवशेष अनिवृत्तिकरण काल रहता है, शेष के संख्यात बहुभाग, पहले क्या होता है, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में जीव आया तो आते ही उसका वो अंतर नहीं करता है। अब पोजीशन क्या है, यहाँ चारित्र मुनि की 21 प्रकृतियां है, अनंतानुबंधी का या तो पहले क्षय करके आया हुआ है या विसंयोजन करके आया है। अब यहाँ चारित्र मुनि की 21 प्रकृतियां है, उसमें उदय रूप क्या क्या है, एक वेद है और एक संज्वलन क्रोध में से कोई एक क्रोध है, हास्यरति वगैरह थी, उदय की विच्छित्ति हो गई है, तो दो प्रकृतियां उदय रूप है। और सत्ता में कितनी प्रकृतियां हैं सब मिलकर, 21 है। अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं है वो 8 का, परंतु वो सत्ता में पड़ी है। हास्यरति अरति वगैरह उसका उदय नहीं है मगर सत्ता में पड़ी है। पुरुष वेद का भले उदय हो परंतु स्त्री वेद वगैरह सत्ता में पड़े हैं। संज्वलन क्रोध का उदय हो तो मान माया लोभ सत्ता में है ही उसके, यानी सत्ता में तो 21 प्रकृतियां पड़ी हैं और उदय रूप 2 है, बराबर। अब अनिवृत्तिकरण गुणस्थान शुरू हुआ तो उसमें वो जो 4 आवश्यक चलते आए अपूर्वकरण से, स्थिति कांड घात अनुभा कांड घात, वो तो चलता ही रहता है। उसके बाद वहां विशुद्धि इतनी बढ़ती है कि यहाँ के चारित्र मोहनीय में अंतर किया जाता है। अभी उसमें कहाँ कितना अंतर होता है उसकी बात हम डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु उदय रूप प्रकृतियां तो उदय में है और बाकी अनुदय रूप प्रकृतियां उदयावली के ऊपर है, मगर ये नीचे, ये पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति है, ये सारे ही यहाँ पड़े हैं। इसको कहते अंतरकरण किया, वो क्रम से कैसे कैसे वो मिटती है, फिर क्या होता है, यहाँ उदय रूप जो है तो यहाँ पुरुष वेद का उदय हो रहा है और ये बंद भी हो रहा है, तो होते 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 उसका जो वेद वाला सवेद भाग समाप्त होने को आता है तो वेद का उदय मिट जाता है और ये सारा आकर क्षपक श्रेणी हो तो नष्ट हो जाता है और उपशम श्रेणी हो तो ये सारा उपशमित होता है। उदय मिटता है ना उसका और बंद भी मिटता है, उदय है तो बंद है, उदय नहीं है तो बंद भी नहीं है, बराबर। उसके बाद संज्वलन 1 का उदय चल रहा है, मान लेते क्रोध का उदय चल रहा है तो यहाँ के सारे जो कुछ है क्रोध रूप से उदय में आते हैं, आते रहते ऊपर से। अन्य भी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान अगर क्षपक श्रेणी है तो वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वो सब नीचे आकर वो संज्वलन रूप से नष्ट हो जाते हैं। अब ये जो पोजीशन है बाद में ये अंतर किया ना, उसके बाद में क्रोध नष्ट हो गया, फिर मान का उदय काल चलेगा, यानी मान माया और लोभ बंधेगी। पहले तो क्रोध मान माया लोभ सभी बनते थे, अभी क्रोध वेदक काल नष्ट हो गया, मान माया लोभ में से बंधेगी। भले उदय किसी का भी हो, पहले क्रोध का हो मान का माया का लोभ का, 4 में से 1 का उदय है और 4 का बंध है, फिर क्रोध का उदय नहीं हो सकता और बंद भी नहीं होगा। अब 3 बंदे के, इसलिए यही ये बता रहे, ये जो अंतर किया उसके बाद जितना काल बाकी है, हाँ उसमें से उतना जाने तक, उतना काल जाने तक इसका बंद है, बाद में बंद रुक जाता है। अंतर करने के बाद पहले में किसका बंद रुक जाएगा, हाँ वेद का, और बाद में क्रोध का, हाँ मान माया लोग। अब यहाँ ये वह इस प्रकार है, वहां से फिर पढ़ती हूँ मैं, 153 पृष्ठ पर 3री लाइन। शेष अर्थात अंतरकरण करने पर जो अवशेष अनिवृत्तिकरण काल रहता है, उस शेष काल के संख्यात खंड करने पर उनमें बहुत खंड जाकर एक खंड अवशिष्ट रहने पर पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध का बंध विच्छिन्न होता है, यह उसका अभिप्राय है। ये तीन ही अर्थ इस सूत्र द्वारा कहे गए हैं, इतना ही बताया इस सूत्र में। पहले में बताया कहाँ से कहाँ तक बनता होता है और कितना स्थान जाकर बंध विच्छित्ति होती है और इतने बंधक है शेष अबंधक है, ये तीन बातें बताई। अतएव यह देशामर्शक सूत्र है, इसमें प्रत्यय कौन से है, ध्रुव बंधिए के निरंतर बंधिए क्या है, स्वोदय से बनते के परोदय से बनते, ये सभी बातें प्रत्यय कौन से है ये अभी इसमें से निकालेंगे, वो बताए नहीं है सूत्र में, इसलिए देशामर्शक है। इसी कारण इसके अन्य अर्थों की प्ररूपणा की जाती है। अब आचार्य उसको बता रहे हैं, पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध, ये ध बराबर करना, इनके बंध व उदय दोनों साथ विच्छिन्न होते हैं। जब तक पुरुष वेद का उदय है तब तक पुरुष वेद का बंध भी है। वेद में ऐसा ही है ना, उदय है तब तक बंध है। आपने जो देखा था पुरुष वेद का बंध पहले विच्छिन्न होता है, वो स्त्री वेद के उदय वाले के लिए। जहां तक वेद का उदय है वहां तक पुरुष वेद का बंध है, ऐसा मैंने कहा। परंतु यहां पुरुष वेद के उदय के साथ पुरुष वेद के बंध की विच्छित्ति बता रहे, यहां एकमात्र पुरुष वेद का ही बंध है। उदय भले नपुंसक वेद का हो, स्त्री वेद का हो या पुरुष वेद का हो, स्त्री और नपुंसक वेद के लिए उसका उदय पहले मिट जाता है, पुरुष वेद वाले का उदय बाद में मिटता है, उसकी अपेक्षा से वो डिफरेंस वो यहां नहीं लेना है। तो यहां क्या कहते हैं, पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध इनके बंध व उदय दोनों साथ विच्छिन्न होते, साथ यानी वेद और क्रोध एक साथ नहीं विच्छिन्न होते, बंध पुरुष वेद का बंध और पुरुष वेद का उदय एक साथ विच्छिन्न होता है और संज्वलन क्रोध का उदय और संज्वलन क्रोध का बंध एक साथ विच्छिन्न होता है, ऐसा लेना उसको। वेद और क्रोध को एक साथ नहीं मिटाना, क्योंकि पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध के उदय के सत्व क्षय से या उपशम से नष्ट होने पर, इसका अर्थ क्या है, यानी उदय का नष्ट होने पर। उदय नष्ट कैसे हो सकता है, या तो सत्व का क्षय यानी क्षपक श्रेणी वाले के सत्ता में से नष्ट होना, उसको सत्व क्षय कहते हैं, या उपशम श्रेणी वाले का भी उदय मिटेगा। कैसे मिटेगा, उपशम होने पर मिटेगा, क्योंकि वहां पहले वेद का उपशम किया जाता है फिर क्रोध का उपशम किया जाता है, क्रम से करते हैं ना, तो उपशम हुआ तो उसका उदय मिट गया है। तो उदय नष्ट हुआ है किस कारण, उसके दो कारण बताए। देखो फिर संज्वलन क्रोध के उदय के नष्ट होने पर, और उदय के नष्ट हुआ वो दो पद्धति से हुआ, सत्व क्षय से या उपशम से, उन दोनों का बंध नहीं पाया जाता। ये दोनों को अलग अलग लेना हो, किसको, वेद और क्रोध के लिए, क्योंकि वेद का उदय और बंध दोनों पहले मिटेगा, उसके पश्चात क्रोध का उदय और बंध चलता रहेगा। अगर क्रोध का उदय है वहां तक क्रोध का बंध भी है। शंका, संसार अवस्था में स्वोदय के बिना भी बंध पाया जाता है, अतएव इनका बंध स्वोदय का अविनाभावी नहीं है। क्या कहते हैं, संसार अवस्था में, यानी ये नवे गुणस्थान की बात छोड़ दीजिए, अन्यत्र जहां लोभ मान माया का भी उदय चल रहा है और क्रोध भी बन रहा है, तो यहां क्रोध का बंध मिट जाता है तो वहां कहा उसका उदय भी मिट गया। तो भले ना क्रोध का उदय नहीं हो, संज्वलन मान का माया का लोभ का आगे उदय चलता रहेगा, तो वहां पर क्रोध का बंध क्यों नहीं है, क्योंकि संसार अवस्था में तो अभी तक हमने देखा था, छठे सातवें गुणस्थान में भी देखा था, आठवें में भी देखा था, क्या संज्वलन क्रोध मान माया लोभ किसी का एक का उदय हो और चारों का बंद हो रहा था, तो यहाँ वैसा क्यों नहीं है? इसलिए शिष्य क्या कहता है, संसार अवस्था में स्वोदय के बिना भी बंध पाया जाता है। स्वोदय ने भी क्रोध के लिए क्रोध का ही उदय होना जरूरत नहीं है, इसलिए इनका बंध स्वोदय का अविनाभावी नहीं है, ऐसा आप सिद्ध करो। तो कहते ऐसी शंका करने पर उत्तर देते हैं कि संसार अवस्था में उसके ऊपर बिंदी लगाना, वैसा भले ही हो, यानी इसके पूर्व की अवस्था में आठवें गुणस्थान तक या अभी तक जो बीच में गैप थे ना अंतरकरण कहने के पहले तक भले ऐसा हो, क्योंकि वैसा वहाँ इष्ट है, यानी वैसे वहाँ तो होता ही है, यानी वो तो मान्य ही अपने को, परंतु यहाँ पर यानी अभी अनिवृत्तिकरण गुणस्थान है और उसका बीच में वो अंतरकरण कर दिया है, अभी उपशम और क्षपणा चालू हो गई है, अब यहाँ पर प्रतिपक्ष प्रकृति के बंध के बिना बंध विच्छेद स्थान में ही उदय का विच्छेद होने से, जहाँ तक उसका बंध है बंध का विच्छेद हो जाता है, वहीं पर उसके उदय का भी विच्छेद होता है। क्रोध प्रकृति यहीं तक बनती है तो क्रोध का उदय भी यहीं तक पाया जाता है। आगे क्रोध का उदय पाया जाता है, ऑप्शनल क्रोध का ही उदय होगा ये जरूरी नहीं है। क्रोध के बंध की विच्छित हुई ना यहाँ पर, तो वहाँ उदय हो सकता है, लोभ का भी हो, मान का भी, माया का भी हो, ऑप्शनल है। क्रोध का उदय वहाँ पर ऑप्शनल है, परंतु यहाँ बंध की विच्छित हुई, इसके आगे क्रोध का उदय हो ही नहीं सकता। यहाँ तक होगा भी और नहीं भी होगा, बंध यहाँ तक ही है क्रोध का, और उसकी उदय की विच्छित यहीं पर होती है, क्योंकि इसके आगे उसका उदय नहीं पाया जाता। यहाँ तक उदय की संभावना है, किसी के क्रोध का ही उदय है, क्रोध का ही बंध है, किसी के मान का उदय, माया लोभ किसी का उदय, परंतु क्रोध का बंध यहाँ तक ही है। उसकी विच्छित होने पर क्रोध का बंध भी नहीं पाया जाएगा आगे चलकर, और उदय भी नहीं पाया जाएगा। एक काल में दोनों का विच्छेद विरुद्ध नहीं है, इसलिए ये बात यहाँ स्पेशल कथन है, यहाँ पर ये बात घटित होती है। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में ये जो अलग अलग काल बताए, क्रोध वेदक काल, मान वेदक काल, माया वेदक काल, ऐसा उसका वेदक काल ऐसे उसका नाम है, उसके आगे उसका उदय नहीं पाया जाएगा, बंध भी नहीं पाया जाएगा। अब कहते इन दोनों प्रकृतियों का, यानी पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध की बात कर रहे हैं, स्वोदय परोदय से बंध होता है। स्वोदय से ने पुरुष वेद के उदय में पुरुष वेद बंधेगा, किसी के स्त्री वेद का उदय होगा तो भी बंधेगा, बंधने वाली तो एक पुरुष वेद की प्रकृति है। वैसे संज्वलन क्रोध है, बंध यहाँ तक ही है, परंतु हो सकता है कि मान का उदय हो या माया का या लोभ का या क्रोध का होगा, तो हम कहेंगे स्वोदय से बंधी। मान माया लोभ का उदय होगा और क्रोध बंधेगी तो हम कहेंगे परोदय से बंधी, दोनों से बंध होता है, क्योंकि स्वोदय के बिना भी उनका बंध पाया जाता है। अब कहते संज्वलन क्रोध का बंध निरंतर है, क्योंकि वह 47 ध्रुवबंधी प्रकृतियों के मध्य में आया है। हमने देखा था वो मिथ्यात्व और 16 कषाय में इसको लिया था। पुरुष वेद का बंध सांतर है, सांतर यानी वो प्रतिपक्ष वाला है। कहाँ तक सांतर है? पहले गुणस्थान में तीन वेद में से एक वेद बनता है, पुरुष वेद का बंध होगा तो उसके लिए प्रतिपक्ष यहाँ उसके दो है। दूसरे गुणस्थान में स्त्री वेद या पुरुष वेद बंधेगा, और तीसरे गुणस्थान के आगे 9वें तक पुरुष वेद ही बंधेगा, वहाँ हम निरंतर कह सकते हैं उसको। इसका कारण यह है कि मिथ्यादृष्टि और सासाधन गुणस्थानों में प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध पाया जाता है। इसका बंध निरंतर भी है, क्योंकि पद्म एवं शुक्ल लेशा वाले तिर्यंच व मनुष्य मिथ्यादृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टियों में तथा सम्यक मिथ्यादृष्टि आदि उपरम गुणस्थानों में भी निरंतर बंध पाया जाता है। हमने तो गुणस्थान की बात बताई, यहाँ तो वो लेशा वाले भी बात यहाँ निकली, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक अश्विन भाई।